जो बोला ना पूछना हो तो पूछ सकते, मुझे नहीं चाहिए अंदर अंदर।
बाबा कई बच्चे बाप ने दृष्टि देते समय मनोनेत्र से आंख बंद करके देखते हैं ना, थोड़े थोड़े बच्चे आंखें खोल कर खुली हुई आंखों में देखते हैं, कैसा कौन सा तरीका में याद करना चाहिए?
ये अब तक पूछना बाकी रह गया,
खुली हुई आंखों में याद करने का तरीका बताया आपको।
अरे साकार में निराकार को याद करना है और दृष्टि लेते समय आत्मा को देखना होता है न कि इंद्रियों को देखना होता है? आंखों को देखना होता है, पहले इस आंख में फिर इस आंख में फिर इस आंख में फिर इस आंख में ऐसे करना होता है। बाबा ने आत्मा को देखने के लिए बोला है या इंद्रियों को देखने के लिए बोला है? आत्मा को देखना, आत्मा देखेंगे तो आत्मा की रोशनी आंखों से दिखाई पड़ती है, इन आंखों में रोशनी निकलती है ना। जब आत्मा निकल जाती है तो आंखें कैसी हो जाती हैं? रोशनी रहती है नहीं रहती? तो आत्मा को देखेंगे, बिंदी आत्मा की यादगार है ना, आत्मा को देखेंगे तो दृष्टि स्वतः ही मिल जाएगी। ये पुरुषार्थ थोड़ी करना है कि हमें आंखों को देखना है क्या? आंखों को देखना है, नाक को देखना है, मुख को देखना है, नहीं आत्मा की स्थिति में रहना है, अपनी आत्मा की स्थिति में रहना है और आत्मा बाप को देखना है।
पाठशाला
को
ताला लगाना है,
ताला लगाना है,
ताला भी नहीं लगाना चाहिए।
ताला क्यों लगाना चाहिए? कोई निमित्त बना दो दूसरे को, कहीं जाना है काम से तो कोई दूसरे माता के हाथ में चाबी दे दो, गीता पाठशाला खोल के रखना।
ऐसा दिन आ जाएगा,
नहीं नहीं वो बात गीता पाठशालाओं को ताला लगाने वाली बात नहीं बताई, ये बताया कि मिनी मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ताला भी नहीं लगाने देंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बहने लगी थी, तो जिन कन्याओं माताओं को सिंध हैदराबाद में सात सात तालों के अंदर रखा गया था कि कहीं दादा लेखराज के सत्संग में न जाने पावे, फिर जब खून की नदियां हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बहने लगी तब क्या हुआ? वो ताला लगाने वाले कहां चले गए? सब भाग गए, अपनी अपनी जान बचा के भागे और उन कन्या माताओं को मौका मिल गया बाबा के पास जाने। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होगा।
पांच
पांडव
पहले से भी
यज्ञ में
पहले से भी
पहले तो पंडा होता है, पंडे पंडा जब आता है तो पांच पांडवों के साथ आता है या तीन मूर्तियों के साथ आता है? तो पहले तीन मूर्तियां होती हैं, पहले से ही पांच पंडे नहीं तैयार हो जाएंगे। पंडा है बाप और पांडव है बच्चे, तो बच्चे बाद में पैदा होंगे, पहले ही पैदा हो जाएंगे बाद में।
बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कहते हैं ना? अभी तो विष्णु द्वारा पालना में परिस्थितियां कैसे कैसे होती? सारी दुनिया ब्राह्मणों की दुनिया में परिस्थिति कैसी होती, कैसे पहचान होती,
कैसे पहचान होगी,
पहचान
क्या पहचान,
विष्णु विष्णु का पहचान, विष्णु का पालना का पहचान कैसे होगी।
विष्णु तो श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन की पालना करेगा या जिनमें डिफेक्ट होगा उनकी पालना करेगा। जो नष्ट हुआ स्मृति लब्धा के पेपर में पास हुए होंगे उनकी पालना करेगा, उस संगठन में होगा, या जो अपने मोह माया में बंधे हुए होंगे उनकी पहले पालना करेगा।
पालना करने की जरूरत भी क्या
नहीं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की पालना होती है और विष्णु द्वारा, विष्णु द्वारा जो पवित्र आत्मा होती है उनकी पालना होती है। विष्णु का राज्य वैष्णव पंथ कहा जाता है, वो ऊंचे से ऊंचा पंथ है। क्या विष्णु तब कहा जाता है जब लक्ष्मी नारायण दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। विष्णु तब कहा जाता है जब ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती इन चारों संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। वो तो बहुत श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है ना। जो संगठन बनेगा वो एकदम लाखों करोड़ों का बन जाएगा, हजारों आत्माओं का होगा, सैकड़ों आत्माओं का होगा, या शुरू शुरुआत में जो विष्णु संगठन बनेगा वो थोड़ी आत्माओं का होगा, छोटा सा परिवार होगा। नरक की दुनिया के बीच उनको पढ़ाने की दरकार है। जो विष्णुकुल में पहुंच गए उनको पढ़ाने की दरकार है। ब्रह्मा सो विष्णु बन गए उनको पढ़ने और पढ़ाने की दरकार है। ब्रह्मा को भी पढ़ाने की दरकार नहीं रही, ब्रह्मा ही विष्णु बन गए, तो पढ़ने की दरकार तो उनको है जिनमें डिफेक्ट है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की पूरी पढ़ाई पढ़ी नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, अलवेलापन किया है, उनको पढ़ाते रहे।
पालना मान क्या, विष्णु की पालना मान, पालना ज्ञान पालना नहीं
है,
ज्ञान से पालना करना।
सत्युग में लक्ष्मी नारायण क्या पालना करेंगे, रोटी दाल बना के खिलाएंगे क्या, कुछ नहीं, आत्म की स्थिति में रहेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे, दुख देने लेने की बात ही नहीं। विकारी सुख भोगने की बात ही नहीं।
बाबा नवग्रह के मुंह पर तेल जो डालते हैं अभिषेक के लिए,
क्या डालते हैं,
तेल,
मतलब घी क्यों नहीं डालते, तेल क्यों डालते हैं, है? नौ ग्रह जो है नौ ग्रहों के ऊपर तेल डालते हैं कि शनिदेव के ऊपर तेल डालते हैं,
तिल का
तेल, तो
शनि देवता है उसके ऊपर तेल डालते हैं, नौ ग्रहों के ऊपर तेल डालते हुए देखा
गया,
नौ ग्रहों के ऊपर
भाई
डालते हैं, घी नहीं डालते, घी भी डालते, घी तो अच्छी चीज है, है? तेल तो उतनी अच्छी चीज नहीं है, है? एक होता है घी का दीपक जलाना और एक होता है तेल का दीपक जलाना, ज्यादा सुगंध कौन सा छोड़ेगा?
घी।
कृत कहा जाता है शुद्ध याद। कृत मना शुद्ध याद, जिसमें कोई मिक्सरिटी नहीं, शुद्ध है, खालिश ही। और तेल जो है वो उतना शुद्ध नहीं है। मैंने जो और अष्ट देवताएं हैं वो उतनी शुद्ध नंबरवार याद की नहीं, वो नंबरवार याद की होते हैं। एक जैसी सबकी याद हो नहीं सकती, कुछ न कुछ मिक्स जरूर हो जाता है। जो अष्टदेव है वो नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे?
नंबरवार
होते हैं, इसलिए वो तेल दिखाया हुआ। और जो अष्ट देवताएं हैं वो भी आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं। क्या? जब आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं तो सब एक जैसे नीचे गिरते हैं या अंतर होता है गिरने गिरने में?
अंतर होता है।
कोई तो चंद्रवंश में गिरते हैं, कोई इस्लाम वंश में गिरते हैं, कोई बौद्ध वंश में गिरते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरते हैं। 83 जन्म तो सालिम रहते हैं, आखिरी जन्म में नीचे गिर जाती है आत्मा। थोड़ी कुछ न कुछ मिक्सरिटी हुई ना, संघ के रंग की थोड़ी थोड़ी मिक्सरिटी हो गई ना, और जो मिक्सरिटी हुई वो नंबर वार रहेगी या एक जैसी रहेगी? नंबर वार रहेगी। तो वो याद में भी डिफेक्ट हो जाता है। किसी ने 83 जन्म एक का ही संग लिया और 84वें जन्म में बुद्ध के जन्म धर्म में कन्वर्ट हो गया, बुद्ध को याद करने लगा, बौद्धियों के संग में रहने लगा, तो थोड़ी याद मिक्स हो गई ना, उतनी शुद्धता नहीं रही। इसलिए अष्टदेव हैं उनकी फिनिशिंग में भी अंतर पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंतर रहता है। और 5 मिनट से ज्यादा लगाएंगे तो क्लास बंद। آتی ہیں اور وہ نئی نئی باتیں لوگوں کو اچرج بھری لگتی ہیں. تو دوسروں کو جب سنائی جاتی ہیں تو ان کو بھی اچرج آتا ہے, پرشن بھی کرتے ہیں, کچھ پرشنوں کا سمادھان ہم کر دیتے ہیں, کچھ کا نہیں کر پاتے ہیں, یا سمادھان کر دیتے ہیں لیکن اندر سے ہم خود سنتشٹ نہیں ہوتے کہ ہم نے ٹھیک طرح سے سمجھایا نہیں. تو وہ باتیں ڈائری میں نوٹ کرتے رہنا چاہیے کیا دوسروں کو سمجھاتے سمے جو باتیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں ان کو ڈائری میں نوٹ کر لیا, اور جب بابا آتے ہیں تو ان کے سامنے کلیئر کر لینا چاہیے.
بابا یہ مرلی میں پرشوتم ماس پرشوتم سال کا اس کا کیا؟
پرشوتم ماس جو منایا جاتا ہے ضرور سنگم یوگ میں کوئی ایسا ایک ماس آتا ہے جس ماس میں چاروں طرف بڑی زور شور سے گجگور ہوتی ہے گیان کی. اخبار والے بھی گیان کی گجگور کریں گے, ٹی وی والے بھی کریں گے, پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا, آٹومیٹک ہوگا, اور ریڈیو والے بھی کریں گے. ایک ماس ایسا نودا ہوا ہے اور ہر چوتھی برس آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 76 میں جو باپ کا پرتکشتا ورس ہوا اس کے بعد ہر چوتھی برس کچھ نہ کچھ وشیش پریورتن ہو جاتا ہے. 76-77 کے بعد 87 میں پریورتن ہوا, ایڈوانس پارٹی جو دلی میں استھاپن ہوئی تھی وہ دلی سے ابھر کر کے آل انڈیا ٹور لگاتے ہوئے اور ٹائم پورا ہو گیا اس کا 5-year plan کا. 5-year plan آج کی گورنمنٹ بناتی ہے, بار بار بناتی رہتی ہے, ان کا 5-year plan پورا نہیں ہوتا, اور شیو بابا آتے ہیں تو ایک ہی بار میں 5-year plan پورا کر دیتے ہیں. جو بیگر اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ پرنس بنا دیتے ہیں. جو 76 میں بیگر تھا اس کا کوئی اپنا گھر بھی نہیں تھا, گھر بار نہیں تھا, کوئی پراپرٹی نہیں تھی, اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ 4 ورس پورے ہوئے, 76 ہے پرتکشتا ورس باپ کا, 77 ہے سمپورتا ورس, اور 77 کے بعد وہ 5-year plan شروع ہوا, 78, 79, 80, 81 4 ورس پورے ہوئے, اور 82 میں وہ پرنس بن جاتا ہے. پرنس کا مطلب جو راجا کا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرنس, راجکمار. جو راجکمار بنتا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی درکار پڑتی ہے؟ وہ کوئی سے بھیک مانگے گا نہیں, اس کو پرنس بنا دیتے ہیں. جو 76-77 میں بیگر تھا وہ 5-year plan پورا ہوتا ہے اور بیگر ٹو کیا بن جاتا ہے؟ پرنس. کوئی چتر میں ایسا دکھایا ہے؟ ارے سیڑھی کے چتر میں کہیں دکھایا ہے؟ سیڑھی کے چتر میں یہ بیگر دکھایا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, صرف گیتا گیان ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ گیتا. وہ گیتا گیان ہے اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے, باقی بیگر کے روپ میں دکھایا گیا ہے اور ودیشی لوگ بھیک دے رہے ہیں. اوم شانتی. ہاں آپ دیکھ, وہ بیگر ٹو فل پرنس بنتا ہے. منع پھر اس کو کہیں بھی بیگ کرنے کی, منع کسی سے مانگنے کرنے کی درکار نہیں رہتی. جس کو آنا ہو خود آ کر کے لے, اسے کسی سے لینے کی درکار نہیں. आपका प्रश्न क्या था?
पुरुषोत्तम मास।
हाँ, तो चौथा वर्ष पूरा हुआ और वो बैगर्स क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। ये तो हुई 81-82 की बात। अब 81-82 की बात फिर चार वर्ष ऐड कर दीजिए तो कौन सा वर्ष आता है? 85। हाँ, 85 में एडवांस नॉलेज जो है वो कर्नाटक में फैल जाती है। पहली बार 85 में कर्नाटक से पार्टी का पहला ग्रुप पहुंचता है वहां, और पहला ग्रुप जाकर के जोर शोर से पूरा ज्ञान को ग्रहण करता है, और जब वापस आता है तो कर्नाटक से लंबोर लग जाती है पार्टी की, एक के बाद दूसरी पार्टी, दूसरी के बाद तीसरी पार्टी, इस तरह ये चार वर्ष वो भी पूरे हुए और विशेष कार्य हुआ। 85 के बाद फिर चार वर्ष ऐड कर दो, कौन सा टाइम आया? 89। तो 88-89 में एक वर्ष अव्यक्त बाप दादा बिल्कुल नहीं आए थे, क्या उन्होंने सारी ताकत अपनी लगा दी एडवांस पार्टी में। 85 में कर्नाटक निकला और 86-87 में, 87-88 में ये आंध्रा की पार्टियां बड़ी तेजी से निकलना शुरू हुई 87-88 में, जब एक वर्ष बाबा नहीं आए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ही वर्ष के अंदर 9 कन्याएं निकली जो कि ब्रह्मा कुमारियां थी, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम छोड़ करके वो कंपिल में जाकर के सरेंडर हो गई। बिन फेरे हम तेरे, क्या दुनिया में ऐसा होता नहीं है? या तो ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा हुआ कि 300-400 कन्याएं ब्रह्मा बाबा की बनके रही, या तो फिर एडवांस में ऐसा होता है कि कोई कन्याएं माताएं जो है वो अपना घर बार छोड़ करके किसी एक व्यक्ति की बनकर के रह जाए। नहीं तो कोई भी कन्याएं माताएं जो है, कन्याएं जो है वो शादी करने के बाद किसी व्यक्ति के पास रहती है, शादी किए बगैर किसी के साथ नहीं रहती। लेकिन यहां क्या विशेषता? भगवान का कार्य जो चलता है, उस भगवान के कार्य में जो कन्याएं माताएं हैं वो दुनिया की परवाह किए बगैर ईश्वरीय कार्य में अर्पण हो जाती है। तो 89 में वो 9 कन्याएं निकल पड़ी। 90 का वर्ष शुरू हुआ, उस समय त्रेता युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। 76 तक सती की शूटिंग, और 76 के बाद 12 वर्ष लगते हैं त्रेता युग की शूटिंग। नवासी के बाद जो 90 का वर्ष है वो रुंग का पीरियड है, वो निकाल दें तो 91 से लेकर के 98 तक 8 वर्ष लगते हैं द्वापर युग की शूटिंग। द्वापर युग की शूटिंग में भी जो मध्य का पीरियड है 93-94, उस 93-94 में दिल्ली में फाउंडेशन पड़ जाता है एडवांस नॉलेज का। 93-94 में जैसे 16 सेक्टर में मम्मा आती है और वो सेंटर जमा देती है। 94 के बाद फिर दिल्ली में बड़ी तेजी से विस्तार होता है, और 98 तक आते आते बिल्डिंग तो खड़ी होती ही है लेकिन एडवांस पार्टी का बड़ा जखीरा तैयार हो जाता है दिल्ली में, और 98 में वो जखीरा तैयार होकर के द्वापर युग की शूटिंग का अंत हो जाता है। 98 के बाद एक वर्ष रोग का निकाल के फिर 99-2000 से लेकर के 2003 तक कलयुग की शूटिंग पूरी हो जाती है। चार वर्ष कलयुग की शूटिंग के, 8 वर्ष द्वापर युग की शूटिंग के, 12 वर्ष त्रेता युग की शूटिंग के, और 16 वर्ष सती की शूटिंग के। 61 से लेकर के 76 तक ये सतयुग की स्थिति, 76 से लेकर के और 89 तक ये 12-13 वर्षों में त्रेता युग की स्थिति, और 90 से लेकर के 98 तक ये द्वापर युग की स्थिति, और द्वापर युग की स्थिति के बाद फिर कलयुग की स्थिति 2003 में पूरी होती, एक वर्ष रोंका और जोड़ दिया, ये चार वर्ष पूरे हुए, चार वर्ष में फिर चार वर्ष और ऐड करें तो विष्णु की प्रत्यक्षता होती है। जैसे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता होने के लिए 16 साल लगे, 36 से लेकर के और 2051 तक ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष हुआ, उससे पहले ओम मंडली थी, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं था, ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय भी प्रत्यक्ष हुआ 1950 में, तो 16 साल लगे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में, ऐसे ही दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के 76 तक 7-8 साल लग गए, 68 ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और 68 से लेकर के 76 शंकर की मूर्ति वो भी प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के बीच में। तो पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कम से कम कितना समय लगना चाहिए,
4
साल, यहां भी 4 साल ऐड कर दें, 2004 में 4 साल ऐड किए तो 2008 आ गए, तो ऐसे ही 4-4 साल ऐड करते जाइए, कुछ न कुछ विशेष नया होता है हर चौथी साल,
इसलिए
ये लीप ईयर माना जाता है। ये सब संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है भक्ति मार्ग की परंपराओं का, और नाम पड़ता है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष। पुरुषोत्तम शब्द क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पुरुषोत्तम बनने वाला व्यक्तित्व तो है उसके आधार पर ये सारा परिवर्तन होता है, अपने आप नहीं होता है, कोई निमित्त बनता है वो परिवर्तन करने की। और शिव बाप, शिव बाप बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो तो फादर है, उसका पहला बच्चा कौन है, शिव बाप का पहला बच्चा कौन है,
ब्रह्मा
रचना है या रचयिता है, ब्रह्मा रचना है या रचयिता है, रचना है, तो पहले रचना होती है या पहले रचयिता होता है, रचयिता कौन फिर, ब्रह्मा को रचने वाला कौन, तो प्रजापिता जो है वो शिव का बच्चा हुआ या ब्रह्मा शिव का बच्चा हुआ, पहला बच्चा कौन हुआ, प्रजापिता पहला बच्चा हुआ, तो शिव बाप और शिव का पहला बच्चा जो अपने को निराकारी स्टेज में पहले स्थिर करता है वो हुआ शंकर, डायरेक्ट बच्चा हुआ ना, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, तो ये चारों हस्तियां जो नेक्स्ट टू गॉड बताई है जिनके नाम, वो एक ही हस्ती का नाम है या चार अलग अलग हस्तियां हैं, एक ही है, तो वो हुआ बाप शिव और वो हुआ बच्चा, तो जो बच्चा है बाप का पहला पहला बच्चा वो पहले बाप को प्रत्यक्ष करेगा, कोई दूसरा प्रत्यक्ष करेगा, पहला जो बच्चा होगा वो बाप को पहले प्रत्यक्ष करेगा, तो जो सन वो सोस फादर और फादर सोस सन, शिव बाप जो है अपने शंकर बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में, और शंकर जो है वो शिव बाप को प्रत्यक्ष करता है। संस उस फादर, फादर सोज संस।
बाबा मुंडमाला रुंडमाला में
है, मुंडमाला है मुंड इसे कहा जाता है, ये है मुंड और ये है रुंड, ये ऊपर का हिस्सा है मुंड मुंड और ये नीचे का हिस्सा है रुंड। रुंड माना विजयमाला, क्या प्रैक्टिकल पार्टी, तीन पार्टी है ना एडवांस पार्टी की, कौन कौन सी, प्लानिंग पार्टी, इंस्पिरेटिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी। ऐसे यहाँ ये तीन पार्टियां हैं, तीन पार्टी और एक प्रैक्टिकल पार्टी है। प्रैक्टिकल पार्टी कौन हुआ, ये शरीर प्रैक्टिकल, नीचे का हिस्सा प्रैक्टिकल काम करता है या ऊपर का हिस्सा प्रैक्टिकल काम करता है, प्रैक्टिकल काम कौन करता है, मुंड प्रैक्टिकल काम करता है या ये रुंड प्रैक्टिकल काम करता है, ये जो नीचे का हिस्सा है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है और ये हिस्सा क्या करता है, ये प्लानिंग पार्टी है, या तो ये प्लानिंग करता है या तो किसी को इंस्पिरेट करता है, उमंग उत्साह बढ़ाता है। ये जो हिस्सा है ये उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है या तो प्लानिंग करने वाला है। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं जो है वो है उमंग उत्साह बढ़ाने वाली, इंस्पिरेटिंग पार्टी।
परमधाम कहा
है, अभी एक बात पूरी नहीं हुई, अभी एक बात चल रही थी, क्या प्रश्न था, रुंडमाला क्या है और मुंडमाला क्या है। तो रुंडमाला में ये दो पार्टियां आ गई, एक तो प्लानिंग पार्टी, ये प्लानिंग करता है और दूसरा इंस्पिरेट करता है। चंद्रमा इंस्पिरेट करने वालों का मुखिया कौन, ब्रह्मा बाबा। और जो प्लानिंग पार्टी है वो तीसरा नेत्र शिव जो शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो प्लानिंग करने वाला है नई दुनिया, नई दुनिया का संगठन कैसे तैयार हो, वो कार्य करता है। तो ये प्लानिंग पार्टी हुई, इंस्पिरेटिंग पार्टी हुई, और बाकी नीचे का हिस्सा क्या है, ये सब प्रैक्टिकल पार्टी। माना जो स्थूल में मकान बनेगा वो ये नहीं बनाएगा, इंजीनियर सर मकान नहीं बनाते हैं, क्या जो सेठ है वो मकान नहीं बना पाएगा, ना प्लानिंग करने वाले इंजीनियर मकान बना पाएंगे, कौन बनाएगा, मजदूर। वो मजदूरों में प्योरिटी ज्यादा होती है, इसलिए प्योरिटी की पावर से वो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इसलिए रुद्रमाला नई दुनिया प्रैक्टिकल में नहीं बना पाती, इंस्पिरेटिंग पार्टी ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा है वो भी नई दुनिया नहीं बना पाती, कौन बनाते हैं, जो विजयमाला के मणके निकलेंगे वो नई दुनिया बनाते हैं। इसलिए पहली अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा, क्या भारत माता निकलेगी तो ऐसे निकलेगी जैसे शहद की मक्खियों की रानी निकलती है, एक रानी निकलती है उसके पीछे पीछे सारा झुंड जाता है, सारी ब्रह्मा कुमारी उसके पीछे पीछे निकल पड़ेंगे, एडवांस पार्टी में चली जाएंगी और प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ये तीन पार्टियां हैं, एक प्लानिंग करने वाली, एक इंस्पिरेट करने वाली और एक प्रैक्टिकल कार्य करने वाली। पूरा प्रश्न क्या था,
रुंडमाला और मुंडमाला में।
हाँ, तो उसमें जो प्लानिंग पार्टी है वो है मुंडमाला, जिसमें इंस्पिरेटिंग पार्टी प्रवेश है, ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश है, और एक है प्रैक्टिकल पार्टी रुंडमाला, वो अभी निकलने वाली है, जिसके लिए 4 साल टाइम दिया है, 2004 से लेकर के 2008 तक। पहली मूर्ति को निकलने के लिए 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 8 साल, और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 4 साल। ये प्लानिंग पार्टी प्रत्यक्ष हो जाती है, उसको कहेंगे रुंडमाला, विष्णु की माला माना रुंडमाला।
परमधाम कहा है? परमधाम कहा है? अंतिम समय ही दुनिया के सर्वतों में कहा जाते?
आत्मिक स्टेज में स्थिर होने की बात पहले साकार सृष्टि पर साकार शरीर से होगी, या शरीर छोड़ने के बाद होगी? आप अनुवाद करिए। आत्मिक स्थिति में टिकने वाली बात है वो साकार शरीर के द्वारा होगी, या साकार शरीर छोड़ने के बाद आत्मिक स्थिति बनेगी?
साकार सृष्टि में,
साकार सृष्टि में हम आत्मिक रूप में 100% स्थिर होंगे, ये होगा ना? तो उसके लिए शरीरधारी के साथ ज्योतिबिंदु आत्मा आत्म की स्थिति में टिकेगी ना? अभी एक बात की तुम जवाब ले लो। तो साकार शरीर के द्वारा जब आत्म की स्थिति बनेगी, आत्मा बनेंगे हम, तो साकार सृष्टि पे पहले परमधाम चाहिए या निराकारी दुनिया में चाहिए? साकार सृष्टि में परमधाम चाहिए, वो साकार सृष्टि पे परमधाम बनेगा माउंट आबू, जहाँ सब बीज रूप स्टेज में स्थिर होने वाली आत्माएं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं सब वहां इकट्ठी हो जाएंगे 4.5 लाख, उसको कहेंगे साकारी दुनिया का परमधाम। इसलिए मुर्गी ने बोला है, तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेते हो, वो परमधाम वो तो है, लेकिन उसको भी तुम प्रैक्टिकल में कहां उतारते हो? इस साकार सृष्टि पर उतार लेते। फिर जब 2036 में पूरा ही विनाश होगा सारी दुनिया का, लास्ट डेट में विस्फोट होंगे, तो सब आत्मा शरीर छोड़ के परमधाम चली जाएगी। नहीं जाऊंगे वो आपकी समझ में आ गया? आपकी समझ में आ गया?
विदेशी आत्माएं जो 3 प्रत्यक्ष करते हैं 76 में बाबा को
है,
विदेशी आत्माएं
हाँ?
3 आत्माएं प्रत्यक्ष करते हैं
हाँ?
बाबा को, वो संगम भी बिंदु स्वरूप में आते हैं?
क्यों नहीं आएंगे संगम बिंदु स्वरूप? वो तो आदि वाले हैं, आदि में जिसने बीज बोया, खेती करते हैं ना, एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो पहले बीज डाल देता है वो ज्यादा फायदे में रहता है, या जो बाद में बीज डालता है वो ज्यादा फायदे में रहता है? जिसने पहले बीज डाला वो उसको ज्यादा फायदा होता है, पूरा मौसम मिल जाता है। तो ऐसे ही आदि वाली जो आत्माएं हैं, जो दिल्ली की थी, और दिल्ली वाले जो 3 हैं वो बाप को प्रणाम करते हैं, ये भीख दे रहे बैगर को। क्या बैगर को पालना कौन दे रहे हैं? वो बैगर को पालना दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। तो यह कि आदमी अगर थोड़ा भी किया तो बहुत बन जाता है। जिसने शुरुआत में थोड़ा सहयोग दिया उसका बहुत हिस्सा बनता है, और लास्ट में अभी ढेर सारे निकल पड़े, फिर किसी ने लाखों दे दिया, करोड़ों दे दिया, तो उतना ही बनेगा जितना आधे वालों का बनेगा या उससे ज्यादा बनेगा? आधे वालों का ज्यादा बनेगा, भले वो अभी विरोधी है। क्या विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, लेकिन प्रत्यक्ष करने के बावजूद भी पूरा नहीं समझा, बाप को पूरा नहीं पहचाना, इसलिए फिर बाद में विरोधी बन गए। अभी भी विरोधी है, लास्ट में फिर निकलेंगे, जो आदि में सो अंत में, अंत में निकलेंगे और लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। उनके अंदर बीज तो पड़ा ही हुआ है।
पूछ रहे हैं बाबा, पूछ रहे हैं कि संगम युग में तो बाबा लक्ष्मी नारायण के रूप में आएंगे, नारायण के रूप में आएंगे, वो बाद में जो सतयुग में उनको कैसे पाप लेते हैं? बाद में
सतयुग में जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होंगे वो तुरंत ही राजी करने लगेंगे क्या? उनको सकाश नहीं चाहिए? जो राधा कृष्ण बच्चे हैं 18 साल की उम्र के होने के बाद वो उनको कोरोनेशन होगा, तो कोरोनेशन होने के बाद वो सारा राजकाज अपने आप ही चलाने लग पड़ेंगे या जरूरत पड़ेगी?
तो पाप की जरूरत पड़ेगी,
जरूरत पड़ेगी।
उसके बाद फिर वो जो
दूसरी बात ये है, जिसका ज्यादा योग होगा, जिसकी ज्यादा याद होगी, उसकी उम्र ज्यादा लंबी होगी। तो सबसे ज्यादा याद किसकी तिथि होती है? लक्ष्मी नारायण की। सर जो संगम की लक्ष्मी नारायण, उनकी याद सबसे ज्यादा तीखी होगी या कोई दूसरी आत्माओं की याद सबसे ज्यादा तीखी होगी? संगम की लक्ष्मी नारायण की याद सबसे ज्यादा तीखी होगी। ज्यादा तीखी याद होगी तो उनकी उम्र भी, उनकी उम्र राधा कृष्ण के बराबर होगी या उनसे ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। अगर राधा कृष्ण 150 साल जिंदा रहेंगे तो उनको जन्म देने वाले हो सकता है पौने 200 साल की जरूरत जिंदा रहना।
तो कब से गिना जाए?
76 से। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? हाँ बदलो,
एक साल पूछा था जो अभी कोर्स लेते हुए कि जो आठवा जो लक्ष्मी नारायण जो वो चंद्रवंशी की जो राम है उनको क्या ट्रांसफर करता है?
आठवा लक्ष्मी नारायण,
आठवां लक्ष्मी नारायण जो है बिल्कुल ये हो जाता है, उसके बाद जो चंद्रवंशी आ जाता है तो उसमें क्या ट्रांसफर होता है? मतलब ये जो है बिल्कुल कंगाल हो जाता है, मतलब ज्ञान से कंगाल हो जाता है।
यहाँ ज्ञान से कंगाल होता है, वहाँ स्थूल धन से कंगाल होता है। उसको राजाई करने के लिए कोई साहूकार से धन लेना पड़ता है, यहाँ सूक्ष्म धन लेना पड़ता है और वहाँ स्थूल धन लेना पड़ता है। जो साहूकार निमित्त बनता है यहाँ चाहे वहाँ, वो है राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा 76 में ढेर सारा ईश्वरीय ज्ञान का धन कमाती है, और जो आठवां नारायण बनने वाला है वो हवाई जहाज में घूमता रहता है, मस्ती मारता है। तो उसकी राजाई जो है वो सारी गिरवी रख जाती है।
तो आठवां नारायण है उसका स्थूल धन जाता है,
उसका सारा जो राजपाट है वो राम के दिए हुए धन के ऊपर चलता है, इसलिए वो सारा राजपाट डूब जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य खत्म और राम सीता का राज्य शुरू हो जाता है, त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो जाती है।
दुबे जी पूछ रहे हैं कि क्या सतयुग में स्थूल धन होगा?
क्यों, ये हीरे जवाहरात ये होंगे नहीं? हीरे जवाहरात तो यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ कम है और वहां बहुत होंगे। अरे इतना बड़ा दुनिया है, एक सुनो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में किनारा कहाँ होगा, कौन से देश में होगा?
किनारा तो यही भारत में
होगा। भारत में किनारा होगा। और ये किनारा कैसे बनेगा? जब सारी दुनिया डूबेगी तब भारत का किनारा बना रहेगा। एटम बम फटेंगे, जमीन डोलायमान होगी, सारा सागर जो है वो डोलायमान होगा, तो सागर के अंदर जितने भी हीरे जवाहरात रतन पन्ने मोती है वो सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? भारत के आसपास किनारे पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ तो रत्नों की खान हो जाएगी,
लेकिन उसकी उसका वैल्यू नहीं होगी कुछ।
वैल्यू ये होगी कि जैसे हीरा है, हीरा रात में भी रख दो तो रोशनी मारता है। हाँ, तो वहाँ कोई बल्ब तो होंगे नहीं, वहाँ जो प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ हैं, वो पहाड़ ही ऐसे बन जाएंगे जैसे महल, जैसे गुफाएं होती हैं, और उनमें वो रतन जड़े हुए होंगे चारों, रोशनी रोशनी मारेंगे, पता ही नहीं लगेगा कब दिन है कब रात है।
मतलब मोह ऐसे कुछ तो होगा नहीं,
मोह की बात ही नहीं, वहां लगाव की बात ही नहीं, वहां तो यथा राजा तथा प्रजा सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन है वो पहले जन्म की बात, दूसरे तीसरे जन्म में वो बात कम होती है। तो जो भी स्थूल धन है वो सारा राम के हाथ में आ जाता है, तैतरी उसके धन से आखिरी नारायण का राज्य जमता है और वो राजाई सारी डूब जाती है, लक्ष्मी नारायण का राज्य खत्म, वो आखिरी नारायण जो है वो राजाई को समाप्त करने का निमित्त बनता है, अपने बाप दादे का नाम और कुल क्या करता है, नष्ट कर देता है,
मिट्टी में मिला है, पूरा मिट्टी में मिला दिया।
हाँ जी, मिट्टी में मिला दिया।
इसी
बाबा कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो।
यही चीज आखिरी जो लाइफ के आखिरी में भी यही
एका के अंत में वो जो आत्माएं हैं बीज रूप आत्माएं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये बाप से लड़ाई लड़ती है, बाप के घर को उजाड़ देती है, दिल्ली में उन्होंने ही स्थापना की, वही विरोधी बनती है, बाप के घर को उजाड़ देती है, तो फिर वो विनाशी जन्मों में वो निमित्त बनती है।
चार की जगह में तीन तीन जगह और अड्डा में चार जगह,
रूट्स जो है तीन दिखाए एडवांस में चार दिखाते हैं, तीन तीन इस तरफ तीन उस तरफ
चार। ये तो चित्र बाद में बना दिया, जब एडवांस ज्ञान निकला तो उन्होंने फट से ये चित्र चेंज कर दिया।
उनको ये एक रूट काटने का क्या जरूरत थी, मतलब
इसलिए काटने की जरूरत है ताकि ये बात तुम समझा ना पाओ कि दस धर्म होते हैं,
चार चार तो बता सकते
कि दस धर्म होते हैं, दस अवतार होते हैं, दस रथ होते हैं, राम के बाप का नाम क्या है, दस रथ, तो वो दसों रथ यहाँ होने चाहिए ना, लेकिन आज से लेकर के और जब तक ब्रह्मा का कार्यकाल चला तब तक वो दशरथों ने अपना वर्चस्व कायम किया यज्ञ में, बाद में राम वाली आत्मा आती है उनकी पालना ली, तो वो दसों जनों को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन डिस्टर्ब करने से कोई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगा ज्ञान।
ये सीढ़ी का चित्र जो है लक्ष्मीनारायण का चित्र, मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले बनी है या बाद में?
मम्मा जब हॉस्पिटलाइज थी, मम्मा के हाथ में एक की सत्ता नहीं थी उस समय, उस समय ये चित्र बना है लक्ष्मीनारायण का चित्र। और ये क्या नाम है सीढ़ी का चित्र,
सीढ़ी का हॉस्पिटल में जितने कंट्रोल सीढ़ी चित्र, सीढ़ी चित्र तो ब्रह्मा बाबा के निर्देश पे बनाया
नहीं, सीढ़ी का चित्र उद्योग से बनाया गया
जो ब्रह्मा बाबा के
ब्रह्मा बाबा के रहते रहते बना। करेक्शन चार चित्रों में ब्रह्मा बाबा ने ही किया, लेकिन फिर बाद में मुरली भी करेक्शन करती रही, मुरली ने बोला है सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्य थे, और ऊपर लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विजय थे। जो चार कुमार दिखाए हैं, चार कुमारियां दिखाई है ऊपर, उनके लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय थे, और नीचे लिखो जहाँ ये ब्राह्मण बैठे हुए हैं विनाश काले दुखी बुद्धि विनश्य थे, इनका पद विनाश को प्राप्त हुआ, इनका पद का विनाश हो गया और उनका पद अविनाशी बन गया।
लेकिन ये सब चित्र अभी भी माउंट आबू में है,
पता नहीं
कहाँ फोटो में हमारे जो
पुराने चित्र पता नहीं कहाँ दबा दिए,
जो ब्रह्मा बाबा के लाइफ हिस्ट्री का बुक है आदिदेव उसमें ये सब फोटोज दिखाए हैं।
अरे ये बड़े चित्र ही कहाँ कर दिए, बड़े चित्रों को छुपाने की क्या बात थी, बड़े चित्रों के ब्लॉक ही तोड़ दिए
मम्मा के जो चित्र, मम्मा के चित्र वगैरह थे उसमें ये चित्र दिखाए थे, बुक आदिदेव की बुक है। फिर हमने उनको ये दिखाया कि ये चित्र इसमें है, इसका मतलब ये ओरिजिनल चित्र है, तो ये उन्होंने बोला कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उनको सिंप्लिसिटी करने के लिए उन्होंने नीचे से काट दिया ऊपर से काट दिया इसी बना दिया। मतलब कुमार हमने उनको कन्विंस करने के लिए बोला कि ये चित्र है,
ऐसा ही करते हैं जो देवी देवता सनातन धर्म की धारणाएं थी उनमें से ऊपर से काटती नीचे से काटती इधर से काटती उधर से काटती अपना धर्म स्थापन कर दिया, वो खंडन करते हैं सनातन धर्म का।
शूटिंग सत्ययुग का कराची से नहीं शुरू होती है, कराची से शुरू होती है शूटिंग,
कराची में ही सैंपल शुरू हुआ,
मुरली
जो है नई सत्ययुग की दुनिया का सैंपल कहाँ से शुरू हुआ, नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का वर्षा देता हूँ कहाँ शुरू हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी और वहां कराची में जब सागर के कंठे पर 300-400 कन्याएं माताएं आराम से रही पड़ी थी, उनको कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, तो नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का नजारा था ना, सैंपल तो बना ना, उस सैंपल की यादगार में आज भी अजमेर शरीफ में वो स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ दिखाया गया भक्ति मार्ग में।
बाबा वो मॉडल बीच में है या दीवार में
है,
वो मॉडल कहाँ है,
आप अजमेर में जाके देखा तो हमने भी नहीं, आप भी चलिए हम भी चले
बाद में चलेंगे बाबा, वो दरवाजे पर किया है या
जमीन पे,
जमीन जो
है देखा
जमीन
जमीन में दिखाया।
ये पूछ रहे हैं कि आत्मा को याद करते हैं
है?
आत्मा को याद करते हैं,
आत्मा को,
आत्मा को
हाँ।
भी याद करना है या आत्मा को देखना है उसके बाद बाबा को ही देखना है,
आत्मिक स्थिति ही नहीं बनेगी तो परमात्मा बाप की याद कैसे आएगी, पहला फाउंडेशन तो आत्मिक स्थिति है,
लेकिन दोनों को इकट्ठा कैसे देखेंगे ये पूछ रहे
हैं,
तो आत्मिक स्थिति आत्मा को भी देखें परमात्मा को भी देखें,
अभी तो बताया कंठ से लगा लो
दोनों एक
जगह, बाप को कंठ से लगा लो तो कैसे लगाओ कंठ से,
पुराण
तुम्हारे अरो
शुरू शुरू में सेवकान और सेवकान उनको त्रिमूर्ति को ज्ञान देते हैं त्रिमूर्ति को तीनों को इकट्ठा ज्ञान देते हैं ना
उनको
सेवक राम को और गीता माता को राधा बच्ची
तीनों
आत्माएं होती है
ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही इकट्ठे होने चाहिए जब शिव आते हैं शिव अकेले नहीं आते
उस टाइम ये क्या बोलते हैं ब्रह्मा बाबा भी होते हैं
नहीं
नहीं होते ब्रह्मा बाबा को बाद में याद दिया
मैं तीन मूर्तियों के साथ चार मूर्तियों के साथ आता हूँ ऐसे थोड़ी कहा
तीन मूर्ति को ज्ञान जो देते हैं लेकिन गीता माता जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा को देते हैं और राधा बच्ची को भी देते हैं उस टाइम
राधा बच्ची भी सुनती है
हाँ? तो राधा बच्ची दो बार ज्ञान सुनती है
दो बार माना
मतलब एक तो ये त्रिमूर्ति को जब ज्ञान मिलता है तब भी राधा बच्ची होती है वहाँ पे
त्रिमूर्ति का ज्ञान
मतलब गीता माता को जब जवाब सेवक राम जी देते हैं
हाँ?
तो उस टाइम भी राधा बच्ची होती है वहाँ और जब गीता माता जब ज्ञान देते हैं वापिस तब भी राधा बच्ची होती है क्योंकि वो त्रिमूर्ति का जो ज्ञान जो होते हैं कि ज्ञान देते हैं त्रिमूर्ति ही होना चाहिए सर त्रिमूर्ति ही होना चाहिए उस जो ज्ञान देते हैं भगवान त्रिमूर्तियों के साथ
ही भगवान होना चाहिए प्रजापिता तो होता नहीं जब ब्रह्मा को ज्ञान दिया जाता है
प्रजापिता नहीं होता
नहीं मैं आता हूँ तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ ये थोड़ा ही कहा कि जब इनको ज्ञान सुनाता हूँ तो तीन मूर्तियां होती हैं मैं आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ तो तीन मूर्तियां एक भी आदि में भी थी अभी अंत में भी तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो तब बाकी पूरी प्रत्यक्षता हो 76 में प्रत्यक्षता तो हुई ही लेकिन पूरी प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे थोड़ी आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हुआ और
आपने जब मैंने आपको फोन किया था मार्च में आपने बोला था डायरेक्ट देखने की क्या जरूरत है ज्ञान की आंखों से देख लो ज्ञान की आंखों से देख लो स्थूल में देखने की जरूरत है
जिसने ज्ञान की आंखों से देखा है वो ही स्थूल आंखों से देख सकता है अगर ज्ञान की आंखों से नहीं देखा है तो स्थूल आंखों से भी दर्शन हो नहीं सकता पहले ज्ञान की आंख से शिव बाप समझ में आएगा शिव बाप को स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता
अभी भी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि
क्यों
ज्ञान की आंखों से देखना
ज्ञान की आंखों से देखना पहले
वो कैसे होता है ज्ञान की आंखों से
सत्ता एक कोर्स मिला संदेश मिला चार चित्रों का ज्ञान दिया गया बेसिक नॉलेज दी गई एडवांस ज्ञान दिया गया तो ये ज्ञान की नेत्र से देखना नहीं हुआ ज्ञान के नेत्र से ही
ये सब देने वाला जो है उनको देख रहे हैं उस हिसाब से नहीं
देने वाला तो कोई भी निमित्त हो सकता है लेकिन ज्ञान किसका है
निमित्त नहीं बन रहा ये सब जो सब कुछ देता है
जो देता है
शिव बाबा ही देता है
वो शिव बाबा देता है ज्ञान देने वाला हम लोग थोड़े ही ज्ञान देने वाले ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा ही है ऐसे थोड़े कहेंगे शंकर ने ज्ञान दिया या कृष्ण ने ज्ञान दिया या दादा लेखराज ने ज्ञान दिया ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा ही वो ही तीसरा नेत्र खोलता है
जानना बाबा को जानना देखने से जानना
जानना माने देखना दर्शन करना एक होता है अंदर की आंख से दर्शन करना एक होता है बाहर की आंख से दर्शन करना महत्वपूर्ण कौन सा है अंदर की आंख से जिसने देख लिया वो बाहर की आंखों से भी देख पाएगा अंदर की आंख से नहीं पहचान में आया तो बाहर की आंख काम ही नहीं करेगा आज कोई कह देगा ये भगवान का पार्ट है ये भगवान है अच्छा ठीक है भगवान है कल कोई कहे अरे ये भगवान नहीं शैतान है हम तो कुछ दूसरा समझे निश्चय आ जाओ
आगे बढ़ेंगे। हाँ, चीज़ें। ये है बारहवीं माता जो बताया था, बारहवीं माता जो बताया था, जो
बंदेली
बट्टी के लिए नहीं आ सकते, बट्टी के लिए नहीं आ सकते, फोर्स कर चुकी है।
अच्छा अच्छा।